नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बना दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने POJK के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। पाकिस्तान द्वारा की जा रही कड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी बलों की बर्बरता रविवार को तेज हो गई। मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों से गोलाबारी और झड़पों की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएगी। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापत्तनम में अपने 6ठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी F-38 का जलावतरण करेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण और गोवा में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के तटीय और घाटी क्षेत्रों में तेज बारिश जारी है। पालघर, रायगढ़ और नासिक तथा पुणे के घाटी क्षेत्रों के लिए मंगलवार को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।